ఓం శ్రీ సద్గురు పరమాత్మనే నమః. శ్రీ యోగ వాసిష్ఠ మహారామాయణ. వశిష్ఠ జీ బోలే, హే రామ్జీ, జో కుచ్ వస్తు అవస్తు రూప్ జగత్ భాస్తా హై సో ఆత్మసత్తా సే భిన్న నహీ. ఆత్మా సే భిన్న జగత్ కో మాననా ఉన్మత్త చేష్టా హై ఔర్ మూర్ఖ మానతే హై. మహాత్మా పురుషో కో కాల్ కలనా రూప జగత్ సబ్ ఆత్మ రూప హై. కల్ప సే ఆది లేకర్ అంత పర్యంత సబ్ ఆత్మా కా చమత్కార హై. ఐసే జానకర్ తుమ్ అప్నే స్వరూప్ మే స్థిత్ హో ఔర్ సంసార సముద్ర సే తర్ జావో. హే రామ్జీ, యహ జో మైనే తుమ్కో ద్వైత కే త్యాగ కీ విచార దృష్టి కహీ హై, ఇస్ విచార సే అప్నా జో ఆత్మ స్వభావ హై సో ప్రాప్త హోతా హై. జైసే బుద్ధిమాన్ కో ఖోజనే కే అభ్యాస సే చింతామణి ప్రాప్త హోతీ హై. ఇస్కే ఉపరాంత ఏక్ ఔర్ భీ పరమ దృష్టి సునో, జిస్సే మనుష్య అచల్ ఆత్మ స్వరూప్ కో దేఖతా హై. వహ యహ హై కి మై హీ ఆకాశ, దిశా, సూర్య, అధః, ఊర్ధ్వ, దేవతా, దైత్య, ప్రకాశ, తమ్, మేఘ, పర్వత, పృథ్వీ, సముద్ర, పవన్, ధూలి, అగ్ని ఆదిక్ అస్థావర్ జంగం జగత్ హూ. హే రామ్జీ, సర్వ జగత్ ఆత్మా హీ హై, తో అహం ఔర్ తుమ్ సే భిన్న ఔర్ అనేక్ ఔర్ ఏక్ కైసే హో. జిస్కే హృదయ మే ఐసా నిశ్చయ హోతా హై ఉస్కో సబ్ జగత్ ఆత్మ రూప్ భాస్తా హై ఔర్ వా పురుష్ హర్ష శోక్ నహీ పాతా. సబ్ జగత్ మనోమాత్ర హై తో అప్నా ఔర్ పరాయా క్యా కహియే. జ్ఞానవాన్ కో ఆత్మా సే భిన్న కుచ్ నహీ భాస్తా, ఇస్సే వా హర్ష విషాద్ కో నహీ ప్రాప్త హోతా. హే రామ్జీ, అహంకార్ భీ తీన్ ప్రకార్ కే హై. దో ప్రకార్ కా తో సాత్విక్ నిర్మల్ హై, తత్వ జ్ఞాన్ సే ప్రవర్తతా ఔర్ మోక్షదాయక్ పరమార్థ రూప్ హై ఔర్ తీసరా సంసార్ దిఖాతా హై. ఏక్ తో అహం జో తుమ్కో కహా హై కి సర్వ మై హీ హూ, ముజ్సే అన్య కుచ్ నహీ ఔర్ దూసరా యహ హై కి పరమ అణు జో సూక్ష్మ సే భీ అతి సూక్ష్మ హై సో సాక్షీభూత అవ్యక్త రూప మై హూ. యే దోనో మోక్షదాయక హై ఔర్ తీసరా యహ కి ఆప్కో నఖ శీష్ పర్యంత దేహ రూప జాన్నా సో దుఃఖదాయక ఔర్ సంసార కా కారణ హై. శాంతి సుఖ కా కారణ నహీ హై. అథవా ఇన్ తీనో కో త్యాగ కర్ స్థిత హో, యహ సర్వ సిద్ధాంత కా కారణ హై. జైసీ తుమ్హారీ ఇచ్ఛా హో తైసే కరో, పర్ ఆత్మా సబ్సే అతీత్ ఔర్ సబ్సే పరే హై. తో భీ అప్నీ సత్తా సే జగత్ కో పూర్ణ కర్ రహా హై ఔర్ సబ్ కా ప్రకాశక వహీ హై. వహ అప్నే అనుభవ సే సదా వస్తు ఉదయ రూప హై ఔర్ కిసీ ప్రమాణ కా విషయ నహీ. అనుమాన్ ఆది ప్రమాణో సే రహిత హై ఔర్ సర్వకాల్ సబ్ కో అప్నే ప్రకాశ సే ప్రకాశతా హై. यह जो दृश्य जगत है वह सब आत्मा भगवान है, और दृश्य दर्शन सत असत सूक्ष्म स्थूल सबसे आत्मा रहित है। वही सर्वरूप सबकी वाणी कहने में भी वही आता है और किसी से कहा भी नहीं जाता। जो नानात्व भासता है वह भी उससे अन्य नहीं। आत्मा आदिक संज्ञा भी शास्त्रों ने उपदेश के निमित्त कल्पी हैं। वह सर्वत्र तीनों कालों में स्थित और प्रकाश रूप है। सूक्ष्म भाव और स्थूल भाव से वही है, और सब ठोर व्यापक अपने फुरने से जीव रूप को भासता है। जब चित्त संबित स्फूर्ति रूप होती है तब जीव रूप हो भासता है, और फुरने से रहित द्वैत कलना मिट जाती है। जैसे आकाश में पवन फुरता है तब उष्ण शीत हो भासता है, तैसे ही फुरने से जीव आदिक भासते हैं। आत्मा चेतन सर्वत्र व्यापक रूप है और कभी किसी भाव को प्राप्त नहीं होता। जैसे पदार्थ अपने भाव में स्थित है तैसे ही परमेश्वर आत्मा अपने स्वभाव में स्थित है, परंतु उसका भासना पुर्यष्टका में होता है। जैसे वायु बिना धूलि नहीं उड़ती और अंधकार में प्रकाश बिना पदार्थ नहीं भासता, तैसे ही पुर्यष्टका बिना आत्मा नहीं भासता, पुर्यष्टका में प्रतिबिंबित भासता है। जैसे सूर्य के उदय हुए सर्व जीवों का व्यवहार होता है सूर्य के अस्त हुए से लीन हो जाता है, पर सूर्य दोनों से अलेप है, तैसे ही आत्मा सबका प्रकाशक और निर्लेप है। शरीरों के व्यवहार होने और इष्टता में वह ज्यों का त्यों है, न उपजता है न विनाशता है, न वांछा करता है न त्यागता है, न मुक्त है न बंध है, सर्वदा सर्व प्रकार ज्यों का त्यों एक रूप है। उसके अज्ञान से जीव अनात्म भाव को प्राप्त होता है। जैसे रस्सी में सर्प भासता है और केवल दुखों का कारण होता है, आत्मा आदि अंत से रहित और अज अविनाशी है और अपने आप से भिन्न नहीं हुआ। इससे देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित है, बंध नहीं, और जो बंध नहीं तो मुक्त कैसे हो। सर्वकलना से रहित आत्मा सबको अपना आप है, पर अविचार से मूढ़ रुदन करते हैं। इससे मैंने जो तुमको उपदेश किया है उसको आदि से लेकर अंत पर्यंत भली प्रकार विचार देखो, और इस युक्ति से शोक का त्याग करो। मूर्खों के समान लोगों में शोक मत करो। हे सुमते, बंध मोक्ष की कल्पना का त्याग करो। न बंध के त्याग की इच्छा करो और न मोक्ष के प्राप्ति की इच्छा करो। यंत्री का पुतलावत अभिमान से रहित चेष्टा करो, इसका नाम आत्म मौन है। हे राम जी, मोक्ष आकाश में नहीं और न पाताल में है, न भूमि लोक में है, चित्त का निर्मल होना ही मोक्ष है। अनात्मा के साथ आपको मिलाना और उसमें आत्माभिमान करना यह मल है, और इसका त्याग करना और शुद्ध आत्मा में चित्त का लगाना इसका नाम मोक्ष है। जब चित्त से गुणों में वृत्ति का त्याग हो और सम्यक आत्मज्ञान हो, उसी को तत्वदर्शी मोक्ष कहते हैं। हे राम जी, जब तक आत्मबोध नहीं होता तब तक यह दीन दुखी होता है, और जब आत्मा का निर्मल बोध होता है तब दुखों से मुक्त होता है। इससे और उपायों को त्याग भक्ति करके मोक्ष की वांछा करो, और चिरकाल से जब इस बोध को साध चित्त विस्तृत पद को प्राप्त हुआ तब 10 मोक्ष की भी इच्छा नहीं रहती। एक मोक्ष तो क्या है। हे राम जी, जीव को और कोई उपाय मोक्ष का नहीं, आत्मबोध को ही पाकर सुखी होंगे। जब चित्त अचित्त होता है तब सब जगत भ्रम मिट जाता है, और जगत भी कुछ दूसरी वस्तु नहीं, अद्वैत आत्म तत्व ही है, और जो वही है तो बंध किसको कहिए और मोक्ष किसको कहिए। बंध मोक्ष की कल्पना तुच्छ है, उसका त्याग कर चक्रवर्ती हो पृथ्वी का पालना करो तो तुमको कर्तृत्व का स्पर्श कुछ ना होगा। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, संकल्प से ही जगत उपजा है। अज्ञान से आपको शरीर जानता है और अपने संकल्प को उपजा के अपना स्वरूप जानता है। जैसे कोई सुंदर पुरुष हो और उसको देखे बिना कुरूप जाने, तैसे ही आत्मा के साक्षात्कार बिना देह रूप आत्मा को जानता है कि मैं देह हूँ। ज्यों ज्यों आत्मा का प्रमाद होता है त्यों त्यों देह में अधिक अभिमान होता है। जैसे ज्यों ज्यों मद्यपान करता है त्यों त्यों उन्मत्त होता है। हे राम जी, यह नाना प्रकार का दृश्य अज्ञान से भासता है। जैसे सूर्य की किरणों से मरुस्थल में जल भासता है, तैसे ही असम्यक ज्ञान से आत्मा में जगत भासता है। एक कलना के फुरने से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियां और देह भासती हैं। एक फुरने की ही इतनी संज्ञा है। जैसे एक जल की अनेक संज्ञा होती हैं, तैसे ही एक फुरने की अनेक संज्ञा हुई है। जो चित्त है सो अहंकार है, जो अहंकार है वही मन है, और जो मन है वही बुद्धि है। इसमें कुछ भेद नहीं। जैसे बर्फ और शुक्लता और शीतलता में कुछ भेद नहीं, तैसे ही मन, बुद्धि आदि में कुछ भेद नहीं। एक के नाश हुए दोनों का नाश हो जाता है। इससे मन में जो कुछ कलना है उसका त्याग कर मोक्ष की इच्छा का भी त्याग करो, और बंधन वृत्ति का भी त्याग करो। हे राम जी, वैराग्य और विवेक का अभ्यास करके मन को निर्मल करो। जब मन निर्मल होगा तब मन का मन भाव नष्ट हो जावेगा। जब यह फुरना फुरता है कि मैं मुक्त हूं, तब भी मन जग जाता है, और मन के जागे से मनन भी हो जाता है। जब मनन हुआ तब अपने साथ शरीर भी भासी आता है। अनेक दुख भी भास आते हैं। हे राम जी, आत्म तत्व सबसे अतीत है और सर्वरूप भी वही है, तब कौन बंध है और कौन मोक्ष है? जब मन का मनन निवृत्त हुआ तब न कोई बंध है और न कोई मुक्त है। आत्मा सर्व क्रिया से अतीत है। क्रिया भी इस प्रकार होती है जैसे कि वायु के हिलने से वृक्ष के पत्र और फूल हिलते हैं, तैसे ही प्राणों के फुरने से हाथ पांव आदि इंद्रियां चेष्टा करती हैं। हे राम जी, चैतन्य शक्ति सर्वव्यापी सूक्ष्म और अचल है। वह न आप ही चलती है न और किसी की प्रेरी हुई चलती है, सदा स्थित रूप है। जैसे मेरु पर्वत न आप ही चलता है और न वायु से चलाया चलता है। हे राम जी, जितने पदार्थ भासते हैं सो आत्मरूपी दर्पण में प्रतिबिंबित भासते हैं। जैसे सर्व पदार्थों को दीपक प्रकाशता है, तैसे ही सब पदार्थों को आत्मा प्रकाश करता है। सब पदार्थों में एक आत्मा अनुस्यूत प्रकाशता है और अहम तुम आदि कलना से रहित है। जहां अहम तुम आदि कलना नहीं फुरती, वहां सुख दुख भी नहीं फुरता। जैसे वृक्षों और पहाड़ों से अहम तुम शब्द नहीं फुरता, तैसे ही आत्मा में भी नहीं फुरते। इससे ज्ञानवान में कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं फुरते। हे राम जी, आत्मा निरअहंकार और निराकार, उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व कैसे हुए? आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व अज्ञान से भासता है, जैसे मरुस्थल में जल भासता है। हे राम जी, अज्ञान रूप मदिरा पान करके मन रूप मृग मत्त हुआ है, उससे वह सत असत का विचार नहीं कर सकता। जैसे मृग तृष्णा की नदी असत ही सत भासती है और मृग उसको सत जानकर पान करने के निमित्त दौड़ता है, तैसे ही यह जीव अरूप संसार को रूप जानकर दौड़ता है। जब आत्मसत्ता का सम्यक बोध होता है तब यह अविद्या नष्ट हो जाती है। जैसे ब्राह्मणों के मध्य चांडाली आन बैठे और जब ब्राह्मण उसको पहचाने कि यह चांडाली है तो वह छिप जाती है, तैसे ही जब अविद्या को जाना तब वह नष्ट हो जाती है। हे राम जी, जब अविद्या को ज्यों की त्यों जाना तब अविद्या रूपी जगत मन को नहीं खींच सकता। जैसे मृग तृष्णा की नदी को जब जाना तब तृषि हो तो भी मन को वह जल नहीं खींच सकता। हे राम जी, जब परमार्थ सत्ता का बोध होता है तब मूल से वासना नष्ट हो जाती है। जैसे सूर्य के उदय से अंधकार नष्ट हो जाता है, तैसे ही आत्मज्ञान से अविद्या वासना सहित नष्ट हो जाती है। हे राम जी, अविद्या अविचार से सिद्ध है। जब सत शास्त्रों की युक्ति से विचार प्राप्त होता है तब अविद्या नष्ट हो जाती है। जैसे बर्फ का कण का धूप से गलकर जलमय हो जाता है, तैसे ही विचार से अज्ञान नष्ट हो जाता है। हे राम जी, देह जड़ है और आत्मा सदा चेतन रूप है। फिर जड़ देह के निमित्त भोगों की वांछा करना बड़ी मूर्खता है। जो ज्ञानवान पुरुष हैं वे इस बंधन को तोड़ डालते हैं। हे राम जी, आशारूपी फांसी को हृदय से काटो। जब आशारूपी आवरण दूर होगा तब पूर्णमासी के चंद्रमावत हृदय शीतल हो जाएगा। तैसे ही यह पुरुष भी तीन तापों से मुक्त शीतल हो जाता है, जैसे पर्वत में अग्नि लगे और उसके ऊपर जल की बहुत वर्षा हो तो वह तप्तता से मुक्त हो शांतिमान होता है। हे राम जी, जैसे केसरी सिंह पिजड़े को तोड़कर निकलता है, तैसे ही ज्ञानवान पुरुष भोग वासना के बंधन को तोड़ डालता है। हे राघो, जैसे रंक को त्रिलोकी का राज्य मिलने से वह आनंद को प्राप्त हो, तैसे ही ज्ञानवान को आत्मा के साक्षात्कार हुए आनंद प्राप्त होता है और वह परम निर्मल लक्ष्मी से शोभता है। जब हृदय में आशारूपी मैल जाता है, जब हृदय से आशारूपी मैल जाता है, तब जैसे शरत काल का आकाश निर्मल शोभता है, तैसे ही वह शोभता है।
हरि ओम, ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विदुषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।